दंडोत बंदन अनकृवा सर्व कला संग्रत इंडोलन ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। दसों पातशाहियों के जोत स्वरूप चवर तखत के मालिक कलियुग के जहाज शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु के साजन वाजे साध संगत जी गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आप बड़भागी हो जो गुरु चरणा विच बैठ के उस प्रभु परमात्मा का याद सिमरन जिसके सिमरन से लोक परलोक समर जाता है। आप उस प्रभु को याद कर रहे सो जिसके याद करने के बाद मनुष्य के अंदर परम शांति परम आनंद प्राप्त होता है। ये आप सौभाग्यशाली साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अमोलक वाणी आशा की वार जिसकी कथा आप लड़ीवार श्रवण करते हो। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करते ने सलोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ कड़िए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमें झकना झा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करते ने नानक लेख एक गल होर होमें झकना झा। पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करते ने कि नानक साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करने करते ने कि यदि तूने एक प्रभु परमात्मा का अनुभव नहीं किया उसको नहीं जाना उसका दीदार नहीं हुआ तो पड़ पड़ गड्डी लदी है। पहले के जमाने में लोग जो बड़े बड़े विद्वान होते सन वो बैलगाड़ी के ऊपर अपने ग्रंथों को लेकर भरकर एक शहर से दूसरे शहर गांव से दूसरे गांव जाना साथ में एक झंडा रखना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विद्वान हो, मैं उसके शास्त्र शास्त्र का चर्चा करूंगा, जो मुझको हरा देगा वो बैलगाड़ी के ऊपर जितने ग्रंथ हैं वो ले लेगा। अदरवाइज तुम्हारे पास जितने ग्रंथ हैं वो मैं ले लूंगा। ऐसी परंपरा भारत देश में रही है, सिर्फ भारत में नहीं, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्किस्तान, इन जगह में भी जो मौलाना लोग होंगे सन, मौलवी, हाफिज, वो ऊंट के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ रखते सन। वो भी एक देश से दूसरे देश जाना, एक घोषणा करना कि कोई आलम फाजल है जो मेरे साथ शास्त्र की चर्चा करे, कुरान शरीफ की चर्चा करे, और भी जितने भी शास्त्र है उसकी चर्चा करे, जो मुझको हरा देगा वो हमारे ऊंट पर रखे ग्रंथ को ले लेगा, अदरवाइज तुम्हारे ग्रंथ को मैं ले लूंगा। ये परंपरा चलती रहेगी। यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते ने पड़पड़ गड्डी लदिए है, पड़पड़ भरिए है साथ, भावे तुम गड्डी के गड्डी चार वेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण, सताईस स्मृतियां, महाभारत और जितने दुनिया के ग्रंथ हैं लद के रख लो। लेकिन यदि एक को नहीं जाना, एक का अनुभव नहीं किया, एक का दीदार नहीं हुआ, तो समझ जाओ कि ये सब कुछ पढ़ना, सब कुछ वाद विवाद करना, ये दो कौड़ी का नहीं। पढ़ना क्या है और विद्या क्या है, इसको ठीक से समझो। शास्त्रों में लिखा है विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जिसको पढ़ने के बाद नम्रता पैदा हो। एक कर्म विद्या क्या है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद अहंकार समाप्त हो जाए, जीवन में नम्रता आ जाए। एक दूसरा, विद्या का क्या प्रयोजन है, सा विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जिसको पढ़ने और विचारने से मनुष्य मुक्त हो जाए, सा विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जिसको पढ़ने से मुझे परम पद प्राप्त हो जाए, प्रभु का दीदार हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हासिल हो जाए, वो तो विद्या है। यदि पढ़ने के बाद, बुझने के बाद ब्रह्म ज्ञान हासिल नहीं हुआ, जीवन में प्रकाश नहीं हुआ, जीवन में आनंद नहीं हुआ, तो ये पढ़ना जो है एक बोझ है। मन समझावन कारणे कछुवक पड़ जाएगा। यहां पर कछुवक का भाव यह है कि गुरु के द्वारा एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करो और वो समझ कर अपने स्वरूप में बैठ जाओ। पढ़या नाही भेद बुझिया पावना। एक चीज याद रखना, ब्रह्म ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान सुनने से होता है। इसीलिए वेद को श्रुति कहा है, श्रुति, श्रुति माता।
जो वेद हैं उसको श्रुति माता कहते हैं। श्रुति का भाव यह है जिसके सुनने से, जिसके विचारने से, जिसके जीवन में अपनाने से प्रभु का ज्ञान हो जाए। उसको हम श्रुति कहते हैं। यहां पर विद्या पढ़नी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्या के बगैर तो व्यक्ति पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्यम एतद् पशु भी नराणाम ज्ञानाम ही तेषाम अधिको विशेष ज्ञानेन हीनः पशु ही समान। चार चीजें आहार भोजन नींद मैथुन और भय, ये चार मनुष्य को भी होते हैं पशु को भी होता है। लेकिन पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य और पशु में एक चीज का फर्क है, पशु के अंदर विवेक नहीं होता, पशु के अंदर ज्ञान नहीं होता, मनुष्य के अंदर विवेक होता है, समझ होता है। लेकिन मनुष्य शरीर धारण करने के बावजूद भी यदि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति पशु के समान है। वो चार पांव वाला पशु है, ये दो पांव वाला पशु, बस इतना अंतर है। पशु और इंसान में सिर्फ ज्ञान का फर्क है, इसलिए विद्या पढ़नी बहुत आवश्यक है, गुरबानी पढ़ना बहुत ही जरूरत है। एक समय साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पौंटा साहिब विराजमान सन, कोई सिख पाठ कर रहा था। करते कीमित करता जाने के जाने गुरसूरा, एक सिख ने जाके दो थप्पड़ मारा उसको। पाठ करते वक्त तो सत्कार करना चाहिए, यहां वाणी पढ़ते उसको जाके थप्पड़ मार। उसने पोथी को रखकर गुरु महाराज के चरणों में, सच्चे पातशाह इस सिख ने वाणी पढ़ते मुझे दो थप्पड़ मारा है, जबकि हमने इसको कुछ नहीं बोला। साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोले, गुरसिखा इसने जो थप्पड़ मारा है तुमको, उसका दर्द तो तुमको खत्म हो गया होगा या थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो थप्पड़ तुमने मुझको मारा है उसका दर्द पता नहीं कब तक रहना है। जब साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसा बोले, वो सिख चरना से डिग पाया, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई है। वहां पर साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोले, जो तुमने पाठ किया है करते कीमित करता जाने के जाने गुरसूरा, उसका भाव पता है तुमको कि जो करता परमात्मा वाहेगुरु है उसके गतमित रहस्य को परमात्मा जानता है, गुरु कुछ भी नहीं जानता। के जाने गुरसूरा, सही पाठ पता तुम्हें क्या है? करते कीमित करता जाने कै जाने गुरसूरा, दुलावा है उनके। कै का भाव होता है अथवा, या तो ईश्वर जानता है या गुरु जानता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एको जान। वहां पर वो सिख चरना से डिग के कहता, सच्चे पातशाह मुझे ना तो गुरबानी का अर्थ पता है और ना गुरबानी का सही पाठ है पता, आप कृपा करके अर्थ और पाठ मुझे बताओ। वहां पर साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पांच गुरसिख जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण विवेकी को बुलाए और उनके पास 52 कवि रहने सन, एक पंडित को गुरु महाराज बोले कि भाई इन लोगों को संस्कृत पढ़ाओ, व्याकरण पढ़ाओ। जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी का अर्थ बोध नहीं होगा, उसको विराम का पता नहीं चलेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। वो पंडित कुछ कट्टर स्वभाव का था। हर एक संप्रदाय में, हर एक धर्म में जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो पंथ के बड़े भारी दुश्मन होते हैं। वो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई हो, जिसको विवेक नहीं होता, सिर्फ लकीर के फकीर होते हैं, ऐसे लोग बड़े घातक होते हैं। वो पंडित कहता है, महाराज आप ये बताओ ये किन किन जाति के लोग हैं। गुरु महाराज बोले, मानस की जात सब एक है पहचान वो, ये प्रभु के बंदे हैं, इनके अंदर जिज्ञासा है विद्या पढ़ने की, ब्रह्म विद्या, इसको ब्रह्म विद्या पढ़ा। वो पंडित कहता है, महाराज मैं तो सिर्फ ब्राह्मण को पढ़ाऊंगा और किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं। साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उन पांच गुरु सिखों को बनारस भेजे, ये कहकर कि बेटा जाओ बनारस और जाकर गुरु की सेवा करके, गुरु के हुक्म मान करके नम्रता पूर्वक जाके विद्या पढ़ना। और पंडित जी एक समय आएगा कि इनके द्वारा पंडित विद्या पढ़ेंगे। जो बनारस के बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं वो इनसे विद्या पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उन पांचों को वर देकर के बनारस भेजे। और साथ संगत जी, वो इतने बड़े विद्वान किस तरह वो विद्या पढ़े, आप उनकी कहानी, उनकी साखी सुनोगे तो हैरान होंगे। उन लोगों ने जा करके पहले जो पंडित विद्वान लोग थे उनके पास गए, ये नहीं बोले कि मुझे विद्या पढ़ा, उनकी गऊ की सेवा करने लग पड़े। बहुत समय तक वो पंडित जब प्रसन्न हुए, वो पूछते हैं, बेटा तुम यहां किस लिए आए हो? तो रो करके बोले कि पंडित जी हम लोग आपके चरणों में सिर्फ एक ही इच्छा है कि मुझे ब्रह्म विद्या पढ़ाओ। भगवान कृष्ण जी ने भी वो ब्रह्म विद्या कैसे आती है उसकी विधि जब अर्जुन ने पूछा तब बताते हैं। तद विधि प्रणी पातेन, हे अर्जुन तुम गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणी पातेन जाके लंबे पढ़ के नमस्कार करो। तद विधि प्रणी पातेन परी प्रश्नेन से, और संत से, गुरु से, महापुरुष से कोई प्रश्न पूछने से पहले, विद्या पढ़ने से पहले सेवा करने लग जाओ। परी प्रश्नेन सेवया, सेवा में जुट जाओ। और सेवा करते करते वो प्रसन्न हो और वो पूछे कि बेटा तुम मेरे पास किस लिए आया है, तब तुम जो है हाथ जोड़ के बेनती करो कि हे भगवान, हे गुरुदेव आप ये बताओ कि इस संसार में मैं किस लिए आया हूं, हे गुरुदेव आप ये बताओ मनुष्य मर क्यों जाता है, मर के कहां जाता है और जाता कौन है, आत्मा जाती है या शरीर जाता है? शरीर तो पांच तत्वों का वो यही रह जाता है और आत्मा अचल अटल अविनाशी है, फिर जाता कौन है? ये जो जीवन के मिस्ट्री है, रहस्य है, तुम उनसे प्रार्थना करके पूछो। सत्संग जी तद विधि प्रणी पातेन परी प्रश्नेन सेवया उपदेश क्षति ते ज्ञान, और वो जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं फिर तुम हमारे ऊपर प्रसन्न होकर उपदेश करेंगे, उसके उपदेश से क्या होगा, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो जब उपदेश करेंगे तो तुम भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। क्योंकि जला हुआ दीपक के पास बुझा हुआ दीपक जाएगा, उसके साथ जुड़ेगा, वो भी जल जाएगा। विद्या पढ़ने की ये विधि है। और साथ संग जी साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो पांच गुरु सिखों को वर दे करके बनारस भेजे। वो इतने भारी विद्वान हुए, इतने महापुरुष हुए, ब्रह्म ज्ञानी बने सारे, और आ करके पंजाब और प्रदेशों में गुरमत का प्रचार किए। गुरमत के जितने ग्रंथ हैं 80% ग्रंथ यही निर्मले, वो बाद में निर्मले संत कहलाए। यूं तो ये निर्मले संत साहेब गुरु नानक देव जी मारे चलाए, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया है भाई गुरदास जी का। ये निर्मल संप्रदाय और उदासी संप्रदाय पहले गुरमत का प्रचार यही कर दे सकते, वो तो बाद में अभी 50 साल से 40 साल से ये तरह तरह की कमेटियां, मिशनरी कॉलेज ये सब सारे बने हैं। अदरवाइज हाथी पर चढ़ के गुरु महाराज का प्रकाश करना और गांव गांव में जा करके गुरमत का प्रचार करना, कथा करना, कीर्तन करना, गुरु से जोड़ना, अमृत छकाना, ये सारे उनके काम थे। जो पुराने यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों को पता है, जैसे संत बाबा दिलीप सिंह जी का नाम सुने होंगे, संत बाबा हरी सिंह जी, इसी तरह से एक पंडित भान सिंह जी कोकरी कला वाले हुए हैं। सा संगत जी वो न्याय शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हुए हैं कि बनारस में पंडित लोग उनको सिंहासन पर बैठा करके आरती करते थे और उनसे विद्या पढ़ते थे। ये साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कृपा का फल है। और उनको ये कहते थे कि ये सारी विद्या जो पंजाब में है वो कहीं नहीं है, लेकिन ये विद्या का जो फल है ये देन साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी है। उनको लोग ऐसे पूछ, पंडित भान सिंह जी कोकरी कलम, पंडित गुलाब सिंह जी, पंडित तारा सिंह रोतम जिन्होंने गुरमत के 80 ग्रंथ लिखे, पंडित गुलाब सिंह जी जिन्होंने अध्यात्म रामायण और मोक्ष पंथ बड़े अद्वितीय ग्रंथ लिखे, पंडित गोविंद सिंह जी जिन्होंने न्याय शास्त्र के ऊपर, न्याय मुक्तावली के ऊपर टीका किए, वेदांत परिभाषा के ऊपर टीका किए, पंडित ईश्वर सिंह जी कलयुगी जिन्होंने एक झंडा लेकर के पूरे भारत में भ्रमण किए और कहते कोई भी विद्वान है जो मेरे से शास्त्रार्थ करे। ये आपके आपके जो पूर्वज हुए हैं वो इतने विद्वान हुए हैं जो पूरे भारत में जो है उनका पताका हुआ है। ये सब साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कृपा का फल है। जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो वो तो गूंगा जो है ना झीवर, वो गूंगा झीवर भी गीता का अर्थ करने लग जाता है। ये तो उस प्रभु की कृपा और गुरु की मेहर हो गई। यहां पर शास्त्रों में लिखा है पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम हम बंदे। यदि गुरु की मेहर कृपा हो तो जो पंगु है ना लंगड़ा वो भी सुमेरु पर्वत को लांग जाता है, और गुरु की मेहर कृपा हो तो गूंगा जो है वो गीता का अर्थ करने लग जाता है। साहेब श्री गुरु हर किशन साहेब जी महाराज उनकी मेहर से सा संगत जी अपने गुरमत विच इतने भारी भारी विद्वान हुए हैं। आप उसको पढ़ेंगे, कभी गुरु रामदास लाइब्रेरी जाने का मौका मिले। बहुत अफसोस से ये बात कहना पड़ता है कि श्रोमणी कमेटी उन हमारे खजानों को छपा नहीं रहा है। हिंदू संप्रदाय में एक प्रेस है उसको गीता प्रेस कहते हैं। गीता प्रेस की खूबी क्या है, 1000 पेज का कोई ग्रंथ होगा तो 1000 पेज में 2 जगह या 3 जगह सिहारी बिहारी की गलती होगी, लेकिन आप गुरमत का कोई भी ग्रंथ ले लो छपा हुआ किसी प्रेस का, हर एक पेज में 10 गलतियां मिलेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। जो खास करके जो गुरु महाराज की वाणी है उसमें सिहारी बिहारी कन्ना मुक्ता लावा दुलावा का इतनी गलतियां मिलेगी, जब आप मिला तो हैरान हो जाए। वो गीता प्रेस देखो जितना लागत होता है उसी लागत पर देते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारा श्रोमणी कमेटी या धार्मिक संस्था हमारे पास इतने ग्रंथ हैं गुरमत के वो प्रचारकों को नहीं पता है, प्रचारकों को इसके नाम नहीं पता है जो हमारे गुरुमत में ग्रंथ हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या है। जो प्रचारकों को नहीं पता, आपको कौन क्या बताएंगे। सत्संग जी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना विद्या का प्रचार किए, इतना ब्रह्म विद्या का प्रचार किए हैं, शायद आज तक किसी ने भी नहीं किया। बहुत अफसोस की बात है कि जब गुरु महाराज जा रहे सन तो सरसा नदी में जो ज्ञान सागर ग्रंथ डूब गया पानी में, वो कहते कितने क्विंटलों का था, कितने क्विंटल का ग्रंथ था, हजारों पेज थे उसके, कितना ज्ञान उसमें भरा पड़ा था। ये बहुत अफसोस की बात ये हुआ। सत्संग जी साहेब गुरु गोविंद गुरु नानक देव जी महाराज जो यहां उपदेश कर रहे ने, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ। देखो विद्या पढ़ना तो बहुत जरूरी है, विद्या के बगैर तो मनुष्य पशु के समान है, लेकिन विद्या पढ़कर अहंकार कर लेना, ये तो वो हाल है जैसे किसी को 36 प्रकार का भोजन खिलाओ, रखो थाल में और एक बूंद जहर डाल दो, बताओ खाने लायक होगा। विद्या तो वो है जिसके पढ़ने से नम्रता हो, विद्या वो है जिसको पढ़ते पढ़ते व्यक्ति मुक्त हो जाए, जीवन का रहस्य पता चल जाए। यहां पर सत्संग जी साहेब गुरु नानक देव जी महाराज के पास पंडित आया, वो पूछ बोलता है आप पढ़ो, तो वहां पर कहते हैं गुरु महाराज क्या पढ़ो, कहते हैं पढ़ो अ, पढ़ो क। गुरु महाराज कहते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो पंडित खींच गया, कहता मैं जो कहता हूं तुम पढ़ो। गुरु महाराज कहते हैं जब तक आप अर्थ नहीं बताओगे मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर मौलवी को लाए, मौलवी जी कहते हैं पढ़ो अलीम। गुरु महाराज कहते हैं बताओ अलीम का क्या मतलब। वो मौलवी भी है ना, वो कहते हैं कि तू ही बताओ क्या होता है अलीम का। खिंच गया मौलवी, कहते हैं साहेब गुरु नानक देव जी महाराज अलीफ के बारे में घंटों बताते रहे, घंटों। अलीफ नाम अल्लाह का है और वो अल्लाह एक है और वो अल्लाह ने सब सृष्टि को पैदा किया है। जब गुरु नानक देव जी महाराज बोले, वो पंडित तो चरना चरना से डेग पे आया और दौड़ा दौड़ा गया। मेहता कल्याण चंद जी जिस लड़के को भेजे ना मेरे पास पढ़ने, ये तुम्हारा लड़का नहीं है, ये तुम्हारा लड़का नहीं है, ये तो परमात्मा साक्षात इस जगत को पढ़ाने आया। जो जगत को पढ़ाने आया उसको तुम कहते मैं पढ़ाऊं उसको, ये तो वो जानता है जिसको जानने के बाद और कुछ जाना नहीं जाता। इसने वो पा लिया है जिसके जिसको पाने के बाद व्यक्ति के अंदर प्रकाश ही प्रकाश होता है, मिट्टी धुंध जग चला। ये तो कोई तुम्हारा बच्चा नहीं है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड़ी है खात। कहते हैं कि इतना पढ़ो कि बेड़ी भर लो, बेड़ी होता है जहां भी जाओ बेड़ी भर लो ग्रंथ का, रात दिन पढ़ते रहो। आगे गुरु महाराज पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, और पढ़िए जेते बरस बरस, बरसों पढ़ो, 20 साल 40 साल 50 साल सारी जिंदगी पढ़ते रहो, जब तक श्वास है तब तक पढ़ते रहो। लेकिन गुरु महाराज उपदेश करते हैं, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, जितनी आयु है उतना पढ़, कोई हर्ज नहीं, पढ़ना चंगा है। नानक लेख है एक गल, और हमें झकना झाक, सब कुछ पढ़िया है तुमने, लेकिन यदि एक को नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा। यदि तूने एक को पढ़ लिया तो समझो सब कुछ पढ़ लिया, और सबको पढ़ के एक को नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा। यहां पर एक शेख एक मोहम्मद इकबाल ने बहुत अच्छा यहां पर लिखे हैं, इल्म चंदा के बेस्तर खानी, दर अमर देश तो निस्त नादानी, ना मुकत बवद ना दानिश मंद, चार पाए भरोए किताबे चंद। इल्म तो वो है जो मनुष्य के अंदर ऐसी समझ पैदा कर दे कि ये सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। इकबाल कहता है कि इल्म विद्या तो वो है जो सब में परमात्मा का दर्शन करा दे। यदि विद्या ने ये काम नहीं किया तो समझो कि चार पांव पर, चार पांव वाले जो खोते होते हैं, खोते के ऊपर जो लाद देते हो ग्रंथ, समझो ये भी दो पांव वाला खोता है, इसके ऊपर ग्रंथ लादा हुआ है दिमाग में। इकबाल ये कहता है यदि विद्या पढ़ के नम्रता नहीं आया, विद्या पढ़ के ज्ञान नहीं आया, विद्या पढ़ करके जो है सबको अपने गले नहीं लगाया, सबके साथ प्रेम नहीं किया, सब में परमात्मा का दर्शन नहीं किया, तो कहते हैं वो विद्या ऐसा है समझे खोते के ऊपर ग्रंथ डाला है, ऐसे तूने दिमाग पर ग्रंथ डाल दिया है, और फर्क क्या। मोहम्मद इकबाल, आज मैं देख रहा था, देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं क्या लिख लेते हैं। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने के नानक लेख है एक गल, और मैं झकना झा। सत्संगत जी एक विद्या है जो गुरु संत महापुरुष देते हैं, एक वो भी विद्या है जब पढ़ते पढ़ते बहुत ऊंची अवस्था आ जाती है तो गुरु मौन में दे देते हैं, मौन में। एक बासकिल ऋषि हुए, बासकिल, उन्होंने जब बासकिल ऋषि ने महर्षि बाधो, महर्षि बाधो के पास बासकिल ऋषि गए, लंबे पढ़ के नमस्कार किया और कहता है गुरुदेव मुझे ब्रह्म विद्या दो। वो चुप रहे, मौन रहे, बाधो ऋषि मौन रहे। थोड़े देर के बाद फिर प्रार्थना किया कि मुझे ब्रह्म विद्या दो। तीसरी बार फिर प्रार्थना किया, गुरुदेव मुझे वो बताओ जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। जब तीन बार पूछा बासकिल ऋषि ने महर्षि बाद से, वो मौन रहे। फिर चौथी बार पूछा तो बाद ऋषि कहते हैं, बेटा मैं तो तुमको बता ही रहा था, मैं तो तुमको उपदेश कर ही रहा था, लेकिन तू समझ नहीं रहा तो मैं क्या करूं। कुछ ऐसी विद्या है ब्रह्म विद्या जो मौन में दी जाती है। वो विद्या जो है, उस विद्या का वो अधिकारी होता है जो गुरु के चरणों में मिट चुका है, मिट चुका है। क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चन्ना नानक लिखिया, क्यों सचियारा होइए। वो सत्य का अनुभव हमें कैसे हो, मुझे कैसे पता चले कि मैं कौन हूं, मैं 3.5 हाथ का जन्मने मरने वाला हूं या इससे अलग हूं, और यदि अलग हूं तो मैं कौन हूं। क्यों सचियारा हुई है, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਪ ਕਰ ਲਓ, ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕੈਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਗਾ। ਮੈਨੇ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਦਾਨ ਕੀਆ, ਮੈਨੇ ਭਜਨ ਕੀਆ, ਮੈਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਸਭ ਹਮਕੋ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ। ਬੜਤਾ ਜਾਤਾ ਈਗੋ। ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ। ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਕਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਅਭੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਯਹਾਂ ਤੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਪੂਰਨ ਸਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਿਸ਼ਯ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਿਸ਼ਯ ਬਣਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਹੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਗ। ਜਦੀ ਤੂਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸੁਣਿਆ ਮਣਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਚਨ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਸੇ ਸੁਣਾ ਮਨਨ ਕੀਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਘਟਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ, ਤੋ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁਆ, ਜਿਸਸੇ ਲੋਕ ਸੁਖੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।